भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर एंड 37th वर्स। ओके, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे हम। अर्जुनो वाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम् कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वेल, लेट्स स्टार्ट एनीवे। ओम अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजनाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओके, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, कल हमने 35 श्लोक तक किया था और भगवान ने अभी तक 6th चैप्टर में ये समझाया है कि योग क्या है और ध्यान योग और भक्ति योग में फर्क क्या है। अभी तक भगवान बता रहे हैं योग क्या है। योग के हमने एक तरह से बोलिए चेकलिस्ट बनाई थी कि भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो कैसे पता लगेगा। दैट्स इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मैं बता रहा था कि ये साइंस है और श्रील प्रभुपाद ने हमेशा भक्ति को साइंस की तरह प्रोजेक्ट किया है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ भगवद्गीता। सो चैंट एंड बी हैप्पी, मगर हमें ये नहीं देखना कि हम हैप्पी हैं, हमें देखना है कि हम लव तक पहुंच रहे हैं या नहीं। आइडिया ये है, क्योंकि कभी कभी हैप्पीनेस अच्छी भी होती है मगर कभी कभी हमें ट्रैप भी कर देती है। नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम फंस जाते हैं सुख में रहकर, भूल जाते अपना गोल। सो भक्ति में तो डेफिनेटली सुसुखम करतुम अव्ययम्, आनंद तो मिलता ही है सबको, नेचुरली आएगा, मगर उसमें खोना अच्छा नहीं है। उस आनंद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, नहीं, मगर अगर आप उसी में खो जाओगे तो प्रेम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में योगी के मन में क्या चेंजेस आएंगे वो बताए हैं, नहीं डिस्कस कर रहे थे हम, और फिर योगी की दृष्टि में क्या चेंजेस है वो भी भगवान ने समझाए हैं, योगी में क्या गुण आएंगे वो भी भगवान ने समझाए हैं। सो ध्यान योगी और भक्ति योग में दोनों में ये प्रिंसिपल्स तो सेम ही है नहीं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान योग और भक्ति योग का प्रोसेस अलग हो सकता है मगर प्रिंसिपल्स एक ही है। इसलिए भगवान ध्यान योग के चैप्टर में भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। मतलब मैंने पहले बताया था, आप लोग कोई सोच रहा होगा कि ये प्रभुपाद ने तो ऐसे ही स्पेकुलेट कर रखा है, कोई सोच सकता है, स्पेकुलेट समझते हो ना, कैसे कहेंगे, मनगढ़ंत से बस भक्ति हर जगह लगा दी है ऐसा लगता है। मतलब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हर जगह प्रभुपाद ने भक्ति घुसा दी, और कई स्कॉलर्स भी कहते हैं, मतलब मेरी ओपिनियन नहीं है या डिवोटीज नहीं कहते, कई स्कॉलर्स भी कहते हैं कि प्रभुपाद की गीता में प्रभुपाद ने हर चीज को भक्ति में जोड़ दिया, मगर एक्चुअली प्रभुपाद ने नहीं जोड़ा है। हर चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे। नहीं, जैसे योग का मतलब क्या, भगवान से जुड़ना, अभी कर्म योग से आप किसी अलग तरीके से जुड़ रहे हो, ध्यान योग से किसी अलग तरीके से जुड़ रहे हो, भक्ति योग से अलग तरीके से जुड़ रहे हो, मगर प्रिंसिपल एक ही है। प्रिंसिपल कैसे कहेंगे हिंदी में, सिद्धांत एक ही है, तरीका अलग है। प्रभुपाद इस अध्याय में भी बोल इसी पोपट में बोल रहे हैं कि तरीका अलग है मगर सिद्धांत एक ही है। और जैसे उदाहरण के लिए अगर मन चंचल होगा तो वो सिद्धांत तो एक ही है, कर्म में भी मन चंचल होगा, ध्यान में भी मन चंचल होगा, ज्ञान में भी, भक्ति योग में भी, सिद्धांत एक ही है। हाँ वो बात है कि अलग अलग तीरों की अलग अलग शक्ति है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भक्ति योग से भगवान तक पहुंच सकते हो। इसीलिए प्रभुपाद ने इस अध्याय में भक्ति योग की भी चर्चा करते जा रहे हैं साथ साथ प्रिंसिपल देखे। जैसे अभी हम पिछले पढ़ रहे थे 27 श्लोक से 32 श्लोक तक कि भक्ति के स्टेप्स क्या है, योगी कैसे कैसे आगे बढ़ता है, भी पहले क्या उसका अनुभव आएगा, दूसरा क्या अनुभव आएगा, तीसरा क्या अनुभव आएगा, वो ध्यान योग भी वही अनुभव आएगा, भक्ति योग को भी वही अनुभव आएगा। बट ध्यान योग का एक को भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, परमात्मा तक आकर वो रुक जाएगा। ओके अब अर्जुन ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान ये तो बहुत अच्छा है, यू आर नाइस एंड यू आर गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट गुड, मेरे में प्रॉब्लम है कि मैं सबको सुन के भी कुछ नहीं करता, मतलब एटलीस्ट हमारे लिए बोल रहे हैं, अर्जुन के लिए नहीं है, नहीं हो पाता, नहीं फ्रेंकली, मतलब अगर हम करना भी चाहते हैं तब भी कर नहीं पाते, या तो कुछ लोग तो कपटी होते हैं जो नहीं करना चाहते, कुछ लोग कमजोर हृदय वाले होते हैं जो करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते, शायद हम लोग दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, कमजोर हृदय हम लोगों का, नहीं कलयुग में सब वीक हार्टेड हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं मगर नहीं कर पाते, हम सोचते हैं हम 16 राउंड्स करेंगे या हम 64 माला कर देंगे या हम लोग ये प्रीचिंग कर देंगे, सपने में तो सबने मंदिर बनाए होंगे प्रभुपाद की तरह मतलब एटलीस्ट जिनको बहुत टाइम हो गया। सो क्या है मतलब आप कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाता, दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई थिंक हम अपने कंट्रोल में नहीं है। सो अर्जुन ने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे हम लोगों के लिए, भगवान अगर कोई अयति श्रद्धा पे, तो अयति मतलब होता है असफल योगी, अयति मतलब होता है कि एक्चुअली अयति मतलब यति मतलब सन्यासी या योगी, अयति मतलब असफल योगी, यति वैसे शब्द आता है यत्न से, प्रैक्टिस, सो जिसकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं हुई है, ये भी समझ लो, जो जो आत्म साक्षात्कार का योग मार्ग वर्णन है प्रभुपाद लिख रहे हैं, परफेक्ट नहीं हो पाया, श्रद्धेयोपेत हो मगर उसमें श्रद्धा है। सो अर्जुन यहां पे सिंसियर लोगों की बात कर रहे हैं, मैंने बताया वीक हार्टेड लोगों की, सो अयति मतलब जो वीक हार्टेड है, कपटी नहीं है, अर्जुन ही नहीं कह रहा कि कपटी श्रद्धे पे, तो मतलब ऑफकोर्स अगर कपटी होता तो श्रद्धा की बात ही नहीं होती, सो वीक हार्टेड है, हमारे लिए पूछ रहा है। योग आज चलती मानस, उसका मन चंचल है, हट गया, अगर कृष्णा कॉन्शियस से हट गया उसका, छोड़ दिया उसने, या तो छोड़ दिया प्रोसेस या अनएंथुसियास्टिक, उत्साहहीन हो गया, नहीं ऐसा मैं बता रहा था, उत्साह ऐसे ही होता है, नहीं प्रोसेस चलता रहता है मगर उत्साह खत्म हो जाता है, संकल्प ढीला पड़ जाता है। सो अप्राप्य योग असंसिद्धिम कह गतिम कृष्ण गच्छति, भगवान उसकी गति क्या है। ओके अर्जुन अगले श्लोक में पूछ रहे हैं भगवान से, हे मां भाव कृष्ण, 38 श्लोक में, क्या भ्रम प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता और छिन्न बिन बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, विमूढ़ा ब्रह्मणोपति प्रतिष्ठो मां भाव। सो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस पूरी नहीं कर पाया, या ध्यान योगी ध्यान योग पूरी नहीं कर पाया, कर्म योग ज्ञान योगी ज्ञान योग नहीं पूरी कर पाया, तो क्या होगा फिर, तो फिर ना वो तो बादल की तरह ना हवा में लटका हुआ है, ना हवा में ना आसमान में ना जमीन पर लटका ही हुआ है बीच में, तो सफेल हो गया, फिर क्या करें फिर। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं है, अगर हम इस लाइफ के एंड में भगवान के पास नहीं गए मृत्यु के बाद तो क्या होगा, तो हमने इस लाइफ में भी हमें मेटेरियल सक्सेस नहीं मिली, उसके पीछे तो हम भाग ही नहीं रहे, ना धन ना जन ना सुंदरी ना हमने एंजॉय किया और भगवान भी नहीं, तो गए काम से नहीं मतलब यहाँ से भी गए यहाँ से भी गए, तो क्या करें मतलब यहाँ भी खाई है वहां भी, क्वेश्चन तो आता ही है नहीं। तभी भगवान कह रहे हैं मां सोचा डरो मत, इस बात का डर लगता है। सो भगवान अब उसका उत्तर कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्वेश्चन आंसर क्या है। श्री भगवान अब प्रभुपाद इसके पॉपट में वैसे लिख रहे हैं नेक्स्ट श्लोक के 39 श्लोक के, हे कृष्णा यही मेरा संदेह है, एतन में संशय कृष्ण छेत्तु महारसी यशेषत, और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि कृष्णा से इसलिए पूछ रहे हैं अर्जुन, कृष्णा भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाले, मतलब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आप और किसी से पूछ ही नहीं सकते कि क्या होगा आगे, पता ही नहीं। मतलब मुझसे भी पूछोगे, किसी सन्यासी से पूछ लोगे, मतलब आप किसी टॉप मोस्ट गुरु से भी पूछ लो, किसी को नहीं पता, कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। शिला प्रभुपाद ने अपने एक लेटर में लिखा है कि लिख रहे थे प्रभुपाद ने, आई थिंक 75 में था क्या था, कि अगर आई थिंक कीर्तनंद महाराज को लिखा था कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा, अगर तुम बार बार के पास जाओगे नाई के पास और तुम ध्यान नहीं दोगे तो रेजर से कट जाएगा, अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि भी तुम रेजर से काटोगे गला तो कट जाएगा और फिर भी तुम मरोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, कटेगा ही नहीं। सो प्रभुपाद उस लेटर में एम्फेसिस कर रहे थे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और रूल्स फॉलो नहीं करोगे जो मैंने सिस्टम बताया है तो तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। सो कौन बता सकता है कि आगे क्या होगा, कौन बता सकता है, केवल भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वअंतर्यामी है, है नहीं। इसलिए अर्जुन ने सीधा भगवान से पूछ लिया कि कृष्णा क्या करना है उसका। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान कैसे बता सकते हैं, अगर भगवान बता सकते हैं तो इसका मतलब हमारे फ्री विल नहीं है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा एक साइंटिफिक क्वेश्चन आ जाता है, फ्री विल समझते हो, स्वतंत्र इच्छा, अगर भगवान बता सकते हैं तो हम स्वतंत्र तो है नहीं, इसका मतलब नहीं। भगवान को अगर फ्यूचर पता है यहाँ इसका फॉल डाउन होगा तो फिर क्या हम कितना भी कर लें क्या हमारा फॉल डाउन होगा, क्या हम भगवान ने डिसीजन दे दिया है क्या। और अगर स्वतंत्रता है तो फिर तो भगवान भी नहीं बता सकते, तो फिर इसका आंसर क्या है, क्या कहते हो। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है ना, भगवान कैसे बता सकते हैं फ्यूचर, अगर बता सकते हैं तो भगवान ने पहले डिसाइड किया हुआ है ना फ्यूचर, तो
कर्म हमारे हाथ में है ना, कर्म हमारे हाथ में,
फिर तो भगवान बता ही नहीं पाएंगे,
फिर भगवान कैसे बताएंगे। तो आप अभी जो चूज कर रहे हो उससे रिजल्ट आएगा, भगवान को कैसे पता लग गया। भगवान बता सकते हैं, भगवान अगर नहीं बता सकते तो फिर तो सर्वअंतर्यामी नहीं है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताओ।
भगवान जानते हैं सब कुछ लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते, उनको पता है कि वो ये है,
क्यों भाई कैसे,
फ्री विल है ना, इसलिए हस्तक्षेप,
तो बता कैसे सकते हैं,
उन्हें पता है कि भाई आगे जाके सब सिस्टम को ना पता कि ऐसे करेंगे,
कैसे पता है,
केस स्टडी
केस बेसिस पर जैसे
अरे तो फिर स्वतंत्रता कहा। एक्चुअली प्रभुपाद से पूछा था एक बार हैदराबाद में, क्वेश्चन है एक्चुअली प्रभुपाद ने पूछा था, इसी शायद यही श्लोक चल रहा था, आई हैव नो आइडिया मतलब एग्जैक्टली, बट ये प्रभुपाद ने डिसाइपल से पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि भगवान भविष्य कैसे बता सकते हैं, तो डिसाइपल्स मतलब कोई बता ही नहीं पाया, उन्होंने कहा कि भगवान जानते हैं फ्यूचर, उनमें शक्ति है, कुछ भी कुछ चल रहा था। प्रभुपाद ने कहा मुझे लॉजिकली बताओ, क्योंकि दिस इज ऑफ लॉजिक, कोई बता नहीं पाया। तो प्रभुपाद ने बोला सिंपल है, उन्होंने बोला भाई देखो चलो आपसे पूछता हूँ मैं, अभी क्या चल रहा है गर्मी, इसके बाद क्या आएगा, आपको कैसे पता सर्दी का सीजन आएगा ना, कैसे पता, सब कह रहे हैं ना सर्दी का सीजन आ रहा है, यस या नहीं, कन्फर्म्ड हो या नहीं, कन्फर्म्ड हो ना, कैसे कन्फर्म, क्योंकि ऐसा हो रहा है नहीं। प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही है, अगर हमें 40 साल के एक्सपीरियंस से पता है कल सर्दी आएगी, भगवान का अनंत काल का एक्सपीरियंस है, भगवान को पता है कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, ही कैन एग्जैक्टली टेल, उनका एक्सपीरियंस बहुत है ना, वो बता देंगे कि भैया ये भक्ति में ये नहीं जाएगा, मैं ये आ ही सकता मेरे पास, तो कितने एड़ी का जोर लगा ले ये नहीं आ सकता, बस यू कैन टेल दैट्स ऑल. सो गॉट माय पॉइंट. इसलिए अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है. इसलिए प्रभुपाद पहले ही लिख रहे हैं कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले हैं, एक्सपीरियंस से प्रेडिक्ट कर देते हैं भगवान. आई थिंक आपके ज्योतिष में भी तो ऐसे ही प्रेडिक्ट होता है. ज्योतिष में कुंडली बनाते हैं जो ब्रह्मा जी बनाते हैं ना विधि, वो कैसे बनती है, कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है अनंत जीवों का, तो वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं. मगर इसका मतलब नहीं कि कुंडली 100% है, 50% होती है सिर्फ, यू नो दिस. ऐसा नहीं है वो होगा ही होगा, उसकी चांसेस 50% है. मगर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स या कुछ टोटके कर लो, टोटके नहीं होते आपके, तो वो चेंज हो जाते हैं. चेंज कर सकते हो मगर 50% चेंज कर सकते हो, 50% नहीं कर सकते. भक्ति करो तो 100% हो जाएगा. ये भी ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, भक्ति करने पे करने वालों पे कुंडली अप्लाई नहीं होती, एटलीस्ट भक्ति शास्त्र में तो ये लिखा है. सो कैसे चेंज हो गया फ्यूचर, क्या भगवान ने क्या पहले से प्रोग्रामिंग की थी फिर चेंज कर दिया अचानक से? नहीं, लाइकलीहुड ज्यादा है इस आदमी का ऐसे करने का, तो ऐसे हो जाएगा. कुछ चीजें जरूर फिक्स्ड होती है, मृत्यु जरूर फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो कुछ चीजें हैं बट मैक्सिमम चीजें चेंज हो सकती हैं. ओके, हम बाद में पूछ लेना. श्री भगवान वाच, भगवान आंसर कर रहे हैं. भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है. हे मित्र, भलाई करने वाले का कभी बुराई से पराजित नहीं होता. आई ये क्या लाइन? ये तो मॉरल इंस्ट्रक्शंस लग रही है. इंग्लिश में क्या लिखा है?
One who does good, my friend, is never overcome by evil.
ठीक है, वो ज्यादा बेहतर लग रहा है. भलाई करने वाले का कभी बुराई से पराजित नहीं होता. नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति. सो भलाई मतलब अपनी भलाई, यहाँ पे कह रहे हैं जो अपनी भलाई करता है, भक्ति करता है, उसका कभी लॉस नहीं होता. वैसे धर्म की दृष्टि से भी ले सकते हो स्टेटमेंट है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, नहीं बुरा तो नहीं होता. अब वैसे कुछ लोग पूछते हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो एक अलग ही टॉपिक है. बट भगवान ने यहाँ पे कहा कि देखो, अगर तुम भक्ति करते रहोगे तो तुम्हारा इस लोक में परलोक में कभी भी विनाश नहीं होगा, भक्ति वहीं से कैरी हो जाएगी. श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पर्पट लिखा है, जाके पढ़ना, कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं संसार में. कुछ लोग तो भोगी होते हैं, कुछ लोग भोगी होते हैं मगर वेदों के अनुसार अपना भोग पूरा करते हैं, सेकंड प्रवृत्ति मार्ग. कुछ लोग निवृत्ति मार्ग होते हैं, जो योगी होते हैं वो लोग निवृत्ति मार्ग में चलते हैं, वो भोगी भोग छोड़ देते हैं. और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भोग छोड़ना होता है, इसीलिए ये मार्ग थोड़ा मुश्किल है. इसलिए लोग गिर जाते हैं, क्योंकि भोग छोड़ना बहुत मुश्किल है. प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिवोशन इज अ वॉर अगेंस्ट इल्यूजन, वॉर अगेंस्ट माया. इट्स अ डिक्लेरेशन, क्या ऐसे डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया. प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति क्या, हमने युद्ध छेड़ दिया ना माया से, यही है भक्ति. अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आपने हवा में हो कि क्या चल रहा है भक्ति में. हम युद्ध कर रहे हैं, ऑफकोर्स कृष्णा हमारे साथ हैं वो बात अलग है, बट तीर तो हमें चलाना है अर्जुन की तरह. सो ये युद्ध है, प्रभुपाल देख रहे हैं, डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया. सो अब हम युद्ध कर रहे हैं तो अपोनेंट भी तो नहीं बैठेगा चुपचाप, माया भी तो पूरी कोशिश करेगी कि आपको गिरा दे. सो माया बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, अनेक अनेक रूपों में आएगी आपके सामने. कभी या तो स्त्री के रूप में आएगी, या कभी आपके रिश्तेदारों के रूप में आएगी, या कभी माँ के रूप में आ जाएगी. ध्रुव महाराज के सामने तो माँ के रूप में आई थी सुनीति, आप पढ़ लो भागवत, सुनीति माया सुनीति का रूप लेके आई थी ध्रुव महाराज को इंटाइस करने की, बेटे छोड़ो ये सब, और कभी कभी देवताओं के रूप में आ जाएंगी माया। भागवत में भी लिखा है कभी कभी आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन होंगे, हनुमान जी कहेंगे भक्ति छोड़ दो, हो गया, हनुमान जी ने बोला है बजरंग बली यहाँ कल से छोड़ रहा हूं। वो माया का रूप होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी तो चलो भक्त हैं वो नहीं रोकेंगे, देवी देवताओं की बात हो रही है, सूर्य चंद्र वरुण गणेश जी ये लोग आ जाते हैं रूप लेके और आपको उल्टी इंस्ट्रक्शन दे देंगे और आप फंस जाओगे। सो ऐसा भी होता है बाय द वे, ऐसा भी होता है भागवत में लिखा है, रोकते हैं वो लोग। वो लोग इसलिए नहीं रोकते क्योंकि उनको द्वेष है, वो लोग इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमसे ऊपर जाने के लिए योग्य है या नहीं, नहीं मतलब हमसे भी ऊपर जा रहा है ना वो वैकुंठ में, तो योग्य है या नहीं, इसलिए। सो प्रभुपाद ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं कई चीजें, और आखिरी लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अष्टांग योग और कृष्ण भक्ति योग दोनों से ही आप टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंच सकते हो, मगर भक्ति योग आसान है, उसे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति योग और ध्यान योग अगर आप सही से करोगे यथाशक्ति, अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। इस पोपट की आखिरी लाइन ये 40वें श्लोक की, उसे कभी भी डरना नहीं चाहिए अगर वो बिना किसी कपट के प्रयास, अगर आप सिंसियर हो तो नहीं डरना चाहिए, तो 100% रिजल्ट भक्ति का अच्छा ही होगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने भगवान को प्राप्त भी नहीं किया तब भी अच्छा होगा, भगवान अपने अगले श्लोक में बता रहे हैं क्या होगा अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो, अच्छा क्या होगा, नहीं हमारा टारगेट क्या है, भगवान ही है ना, फिर भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद प्राप्त पुण्य कृताम लोकान, पुण्य लोगों को प्राप्त करके अनुचित व शाश्वती समा, वहां पे कई समय रहकर शाश्वती समा मतलब अनेक वर्ष रहकर, शाश्वती वैसे होता है ऑलमोस्ट इटर्नली, मतलब इटर्न अनेक काल तक वहां पे एंजॉय करोगे आप, और फिर वहां से शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में शुचि नाम, या धनवानों के कुल में श्रीमताम के घर में जन्म लोगे। योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं अगर हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाए, और जिसकी 99.9% चांसेस है, आई थिंक सो, इतना आसान नहीं है, जो भक्ति करता है उसको आसान नहीं लगता, जो नए होते हैं वो तो कहते हैं हम गोलोक का दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नए में ऐसा लगता है, नहीं नए में ऐसे ही लगता है, बट ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जिसको टाइम हो गया उसको पता है कि इट्स नॉट ईजी। मतलब वैसे प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे पास बैकडोर एंट्री है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है, मगर कई लोग बोलते हैं, बोला आई थिंक प्रभुपाद ने, जैसे लोग डिवोटीज बोलते हैं, सो अगर बोला भी है तो फिर भी आपको ऐसे बैकडोर से हरे को थोड़ा ना घुसा देंगे, मतलब घोलो कोई वो कोई थिएटर थोड़ा ना है कि आ जाओ, मतलब बिना प्रेम के हम नहीं जा सकते, सिंपल है, मतलब एज सिंपल एज फॉर दैट, और प्रेम मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चाहे बैकडोर हो चाहे फ्रंट डोर हो, सिंसियर तो होना ही पड़ेगा, आपको प्रेम होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज वहाँ एंट्री नहीं हो सकती। सो अगर प्रेम तक नहीं पहुँचे, योग भ्रष्ट होगा तो क्या होगा, भगवान कहने कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप पहले तो स्वर्ग जाओगे, प्रभुपाद ने ये भी बोला है, मैंने बाय द वे ये भी बोला है कि मैक्सिमम डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस वाले स्वर्ग में एंड अप करेंगे, प्रभुपाद ने भी बोला है, क्योंकि पाप तो कर नहीं रहे हम, नहीं भक्ति कर रहे हैं अच्छी तरह कर रहे हैं, भगवान तक नहीं पहुंचेंगे तो कुछ तो फल मिलेगा ना, कहीं तो जाएंगे, तो स्वर्ग में चले जाओगे या प्राप्य पुण्य कृताम, पुण्य कृताम का मतलब जरूरी नहीं होता स्वर्ग, प्रभुपाद क्या लिख रहे पवित्र आत्माओं के लोगों में, या तो स्वर्ग में, स्वर्ग के ऊपर भी लोग है, नहीं महर्जन तपस्या, वहां पे ऋषि मुनि रहते हैं, वहां पे चले जाओगे वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे उनके साथ रह के और ट्रेनिंग होगी आपकी, केयरफुल हो गए। हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से अगर वहाँ से परफेक्ट नहीं हुए, ऊपर नहीं गए और, तो फिर नीचे आ जाओगे दोबारा धरती पे। मतलब अगर आपने वहाँ पे भी बात नहीं मानी किसी की, यहाँ तो मानी नहीं, वहाँ पे भी आपने रिवोल्ट कर दिया, नहीं ऋषि मुनियों की बात भी नहीं मानी, वहाँ पे भृगु ऋषि का लोक है महर लोक में, यू नो दिस, महर जनस्तप असत्य, तो उन लोगों में चले जाते हैं, भृगु भृगु मुनि रहते हैं और उनके उनके पास चले जाओगे और वहाँ पे भी आप वीक हार्टेड हो, नहीं कर पाए, मतलब अफकोर्स वीक हार्टेड का कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर आपने खुद अपने हार्ट को स्ट्रांग, दुनिया का कोई गुरु आपको स्ट्रांग हार्टेड नहीं बना सकता, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप आर्ग्यू करना चाहते हो कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के आपको, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने बोला है यू हैव टू फ्लाई योर ओन प्लेन, प्रभुपाद ने कई बार बोला है अपना अपना प्लेन खुद उड़ाना होता है। गुरु डायरेक्शन दे सकता है, उड़ाना आपको खुद है, उत्साह जरूर दे सकते हैं, संकल्प आपका अपना है। तो भक्तों का संग से आपको निश्चय धैर्य उत्साह जरूर मिल जाएगा, करना तो आपको ही है ना, हम थोड़े ना आपके घर में आपके आपको उठाएंगे मंगल आरती में, वी कांट डू लाइक दैट, वी कांट डू। सो इसलिए वहां से फिर आ जाएगा नीचे और फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या तो अच्छे पुरुषों के परिवार में, परिवार अच्छे पुरुष मतलब भक्तों के परिवार में जन्म लेगा वो, नहीं तो अभी हम पढ़ते नहीं बीटी जी कितने लोगों का पुनर्जन्म हुआ है, कहीं डिबोटीज नहीं बोलते हम पिछले जन्म में वहां थे, फिर हम पिछले जन्म भक्ति कर रहे थे, मगर पूरी नहीं हुई थी, अब हम इस कौन में पैदा हो गए, कहीं 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 इंसिडेंसेस आते हैं। सो योग भ्रष्ट हो गए ना वो, और फिर मगर भक्तों के परिवार में पैदा हो गए, उनको दोबारा चांस मिल गया। और श्रीमताम, श्रीमताम मतलब या तो बहुत धनी वालों के घर में पैदा हो गए, एक्सट्रीमली मतलब बिलियनर मिलियनर, तो उसमें आधा चांसेस है कि भक्ति में आ जाए, क्योंकि मेहनत रोटी कपड़े मकान के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हैप्पी। बट ये क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, मतलब ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है, क्या कहते हो, व्हाट डू यू से,
गुड न्यूज में वापस आना तो बैड न्यूज
है, आप लोग क्या कहते हो, इसको थोड़ी स्लो करना, एक नंबर बस, हाँ मतलब पूछ रहे गुड न्यूज है बैड न्यूज है, बस ये क्वेश्चन है सवाल। देखो पहली बार मतलब अल्टीमेट पर्सपेक्टिव से बैड न्यूज है, क्योंकि हम वापस आ गए, दैट्स ऑल, हमारा मिशन फेल हो गया, ये तो डेफिनेटली बैड न्यूज है, मतलब आप जो करना चाहते हो वो आपको मिला नहीं, मतलब हमने हमने भगवान प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना सब कुछ किया, मतलब अपने रिलेटिव से लड़े, अपना घर छोड़ा, संसार में पार्टीज नहीं गए, मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस की नहीं की मतलब ऑफ कोर्स नहीं गए, आप घूमने नहीं गए, फेल तो हो गया मृत्यु के समय, एग्जाम तो फेल हो गया, एक्सटेंड फेल होने के बाद ही तो होता है, फेल होकर आप बैठे हो तभी तो एक्सटेंड हुआ है, फेल तो होगा आपको मानना पड़ेगा। अब हम अपने माइंड को झूठे वर्ड्स बोल के बोल दें कि नहीं हुए, वो आपकी मर्जी है, बच्चों के बोलते हैं बेटे तुम फेल नहीं हुए, ठीक है फेल तो होगा ना, सो फेल हो गए हम, मगर मगर इस फेल से, फेलियर से हमें डर नहीं लगता, पॉइंट ये प्रभुपाद पीछे पीछे लाइन में ही लिखा है कि उससे कभी भी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं, उससे हमें फेल हो गया मगर हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम अल्टीमेटली फेल नहीं हुए, क्योंकि हमने वहीं से भक्ति शुरू की है, आइडिया ये है। आप फर्स्ट क्लास में फेल हो गए, सेकंड क्लास में नहीं गए, मगर एक्चुअली फर्स्ट क्लास का दोबारा सिलेबस नहीं बनना पड़ेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, आपने वहीं से शुरू किया है, दैट्स ऑल, इसलिए एक सेंस में फेल नहीं हुए, इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, नहीं हो सकता, और वो वहीं उस भक्ति वहीं से शुरू करेगा, ऊपर जाएगा तब भी अगर उसने वहां से टेक ऑफ कर लिया तो आगे चला जाएगा, नहीं हुआ तो नीचे आके भी उसको फैसिलिटी मिलेगी, वहां से टेक ऑफ कर सकता है, आगे वो जा सकता है। जैसे वृत्रासुर, वृत्रासुर तो मतलब राक्षसी बन गया चित्रकेतु, और तब भी भक्ति वही की वही थी। राक्षस योनि में भक्ति करना इम्पॉसिबल है, मतलब इसलिए वृत्रासुर का एग्जांपल है। वृत्रासुर का एग्जांपल वेदों में भी है, ऋग्वेद में भी है, बाय द वे ऋग्वेद में, मतलब अगर वेदों में कोई इंसिडेंस आता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे वेदों में कथाएं नहीं होती, पुराने कथा है, वेदों में केवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वृत्रासुर की कथा, इंद्र और वृत्रासुर की कथा ऋग्वेद में है, इनफैक्ट शुरू के पार्ट में, संहिता ब्राह्मणास में, उपनिषद की बात भी नहीं कर रहा। इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो दिखाना आते हैं, देखो असुर और राक्षस की योनि में भी भक्ति वही 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 बनी रहती है, जबकि राक्षस और असुर पूरे तमोगुण में, मतलब वृत्रासुर तो हर सेकेंड करोड़ों पशु पक्षियों को खा रहा था, इतना आधा, मतलब वृत्रासुर में मीट खाने की जो क्या कहते हैं पैशन है, वो प्रवृत्ति, वो अनंत गुना हो गई थी वृत्रासुर में। वो पकड़ पकड़ के आसमान में उड़ते चिड़िया को खाता जा रहा था, भागवतम में आता है। सो बट स्टिल भक्ति बची हुई है, देख लो आप, मतलब हम ऐसे तो असुर नहीं है ना अभी, ऐसे इतनी ऐसी पोजीशन में शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो शाप से ही है ना, तो उससे तो बेटर योनि होगी चाहे कोई भी होगी, तो डेफिनेटली फिर उसमें तो भक्ति हमें याद रहेगी, कोई खराबी तो है नहीं कि वहीं से शुरू कर दोगे, जैसे भक्तों का संग आएगा वहां से फिर से आप कर डालोगे। हो सकता है पिछले जन्म में भी भक्ति कर रहे हो, हमें से कोई और छूट गई हो, वहीं से हमने टेक ऑफ कर लिया। सो अभी प्रभुपाद ने बोला, आप इस जीवन में सीरियस हो जाओ, इसको कंप्लीट कर लो। प्रभुपाद ने कहा इस जीवन, प्रभुपाद ने कहा इस जीवन में इस श्लोक पे ध्यान मत देना, ये हमारे लिए नहीं है अभी, अभी हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि प्रभुपाद ने यह भी बोला है अपने अपने कई लेक्चर्स में कि अगले जीवन में ठीक है आप आ तो जाओगे सदाचारी लोगों के घर में, धनी वालों के घर में, मगर जरूरी नहीं है आपको भक्ति मिल जाए। भगवान ये नहीं कह रहे, माने श्लोक में नहीं कहा, मैंने कहा सदाचारी पुरुषों के परिवार में, धनवान के कुल में पैदा हो जाओगे, चांसेस ज्यादा है, मगर जरूरी नहीं है कि भक्ति मिल जाए, जरूर कुछ नहीं है, चांसेस ज्यादा है। अगर हम बेवकूफी, अगर बहुत अमीर के घर में पैदा हो जाएंगे तो आयाश भी बन सकते हैं, फिर कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगा आपको, बहुत फैक्टर्स है ना काम कर रहे हैं। सो कंप्लीट करो, मतलब इस जन्म में पूरी अपनी, जैसे वो कहते हैं वो, जोर लगा दो बस, एक एक जन्म कर लो यार, मतलब कोई घाटा नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं 42 श्लोक में, अथवा यदि दीर्घ काल तक योगी करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन दुर्लभ है। 42 श्लोक में, अगर बहुत टाइम बाद भक्ति के हाथ गिरे हो, मतलब फुल टाइम बन गए, आपने कई सालों तक भक्ति कर ली और फिर आपका फॉल डाउन हो गया, तो क्या होगा, तो आप अगले जन्म में आपको किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिल जाएगा। वैष्णव परिवार में तो चांसेस छूटने की बहुत कम है, मतलब उसमें भी कोई गारंटी नहीं। भक्ति वन ठाकुर के कितने छह लड़के थे, उसमें से कई लोग भक्त नहीं बने, भक्तिवन ठाकुर के खुद के बच्चे भक्त नहीं बने, मतलब भक्तिवन ठाकुर तो चलो छोड़ो, मतलब भगवान के बेटे नहीं भक्त बने, अद्वैत आचार्य के पुत्र, आई थिंक छह पुत्र थे, कितने अद्वैत आचार्य के, छह थे ना, छह थे, तीन डिवोटी बने और तीन नॉन डिवोटी बन गए। ऋषभ देव जी के पुत्र 90 पुत्र डिवोटी नहीं बने, कर्मकांडी पंडित बन गए। ऋषभ देव भगवान, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, उनके पुत्र नहीं बन रहे। सो इसलिए आइडिया ये होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे गृहस्थ में नहीं सोचते कि मैं अपने बेटे को ये बनाऊंगा। आप अपना बेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं पता किसी को। भगवान का बेटा असुर बन गया था, कृष्ण का बेटा नरकासुर, यू कैन इमेजिन। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मगर अगर चांसेस ज्यादा है, वैष्णव परिवार में पैदा हो गए, चांसेस ज्यादा है। ओके, प्रभुपाद इस पर, पता है, इसमें अपना एग्जांपल दे रहे हैं इस पपट में, दैट्स फनी। प्रभुपाद लिख रहे हैं सौभाग्यवश प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच अत्यंत सौभाग्य सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे ये पता लगता है कि वैष्णव परिवार में कौन जन्म लेगा। मतलब कोई क्वेश्चन कह सकता है कि भगवान कह रहे हैं जिसने दीर्घकाल तक योग किया है। अब दीर्घकाल का मतलब क्या है? दीर्घकाल मतलब डेफिनेटली बहुत दीर्घकाल होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभुपाद अपना एग्जांपल भक्ति संधा का एग्जांपल दे रहे हैं तो यू हैव टू बी एट अ वेरी गुड लेवल कि अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म मिले। बहुत सॉलिड लेवल होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी अच्छे वैष्णव परिवारों में जन्म नहीं मिलता। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनमें भेंट हुई। प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल ले रहा, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू बी, ये तो खैर चाह रहे हैं, ये तो प्रभुपाद दीनता से ऐसे बोल रहे हैं, बट कुछ सन्यासी या कुछ लेवल का होना चाहिए, तब आपको ये चांस मिलेगी कि अगले जन्म में बहुत अच्छे परिवार में सन्यासी के परिवार में पैदा हो। अदरवाइज नहीं होगा वैष्णव परिवार में। अदरवाइज आप या तो अमीर घर में पैदा हो गए, मतलब बिल गेट्स क्या पैदा हो जाओगे अगर हो सकते हो, या अगर आपने 2-3 साल कर ली फिर छोड़ दी तो किसी अच्छे परिवार में, अच्छा परिवार मतलब नहीं डिसेंट मॉरलिस्टिक परिवार, वहां पे पैदा हो जाओ। सो लॉस तो नहीं है ना, लॉस नहीं है मगर आइडियल भी नहीं है। ओके, अब भगवान आके कह रहे हैं यहां पर, ठीक है पैदा हो गए। अब क्वेश्चन है, भगवान ने अर्जुन ने पूछा नहीं, मगर भगवान अब बता रहे हैं कि पैदा होने के बाद अब वो भक्ति दोबारा से लेता कैसे। पैदा तो हो गए मगर दोबारा से पिकअप कैसे करेंगे जिसमें हमें छूट गई है, मैकेनिज्म क्या है, भगवान बता रहे हैं 43 श्लोक में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम तते चते तो भूय संसिद्ध गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, ऐसा जन पाकर वह अपने पूर्व जन की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। प्रभुपाद यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? भरत महाराज, मतलब हिरण की योनी में याद भी था और फिर जड़ भरत की योनी में उनको, इनको तो याद था खैर नहीं, मगर अगर जिसको याद नहीं ऐसा, हम तो भूल जाते हैं ना, तो हमारे केस में कैसे होगा? उसका प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रहे अभी, क्या कहते हो हमारे केस में कैसे होगा? हमारे केस में ऐसे होगा, उसका आंसर भगवान अगले श्लोक में दे रहे 44। अभी पिछले श्लोक में तो याद ही है ना, उनको भूले नहीं थे ना भरत महाराज, हम तो भूल गए ना। अब फिर भूलने के बाद दोबारा वहां से कैसे उठेंगे, भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। सो क्यों उस एक पॉइंट पे छूट गया पिछले जन्म में, इस जन्म में हम कैसे ले रहे हैं, दोबारा से वहीं से शुरू कैसे कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल हमें शुरू करा रहे हैं, क्या चीज शुरू करा रही है, क्या लिख रहे हैं यहां पर? हाँ मतलब पूर्व अभ्यास न तेने वह ये विश्वास, पूर्व जन्म का अभ्यास, पूर्व जन्म का आकर्षण, इंग्लिश में आकर्षण ही लिख रहे ना, अट्रैक्शन, आकर्षण हमें वहां से चला देगी। सो पॉइंट क्या है इसका, आप इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? हमें इस जन्म में जितना भगवान से आकर्षण होगा बस वही हमारी वेल्थ है, वो वेल्थ है हमारी नहीं, अट्रैक्शन। आप अपनी भक्ति को इससे नाप सकते हो, आपको कितना अट्रैक्शन हो रहा है, इससे मत नापो कि आपने कितने माला जप किए, इससे नाप नहीं सकते आप, ये मेजरमेंट नहीं है। कि कई लोग 64 माला भी करते हैं, इतना उन्हें बैठे हैं लोग, कई लोग सिर्फ 16 माला ही करते हैं। प्रभुपाद सिर्फ 16 माला कर रहे थे, प्रभुपाद के गुरु भाई सब 64 माला करते थे, अब देख लो आप प्रभुपाद, एंड एटलीस्ट जब इस्कॉन प्रभुपाद ने शुरू किया था उसके बाद बिजी हो गए थे ना प्रभुपाद। सो माला से आप नहीं नाप सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें माला कम करनी है, चलो हम एक माला करेंगे हम आकर्षित हैं, वो भी नॉनसेंस आइडिया है। आप जितना नाम ले सकते हो अच्छा है, मगर उसे नाप नहीं सकते आप, यू कांट, वो मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट है आकर्षण। तो श्रवण कीर्तन और फिर स्मरणम, प्रभुपाद ने कई बार बोला है कि श्रव की भगवान का नाम लेके भगवान का स्मरण होगा, 8th chapter में आ रहा है, और जितना श्रवण कीर्तन स्मरण होगा उतनी एडवांस्ड है। ऑफ कोर्स नहीं, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आपका माइंड इधर उधर भागे जा रहा है, तो आप एडवांस्ड हो गया, मतलब आप कह सकते हो आप एडवांस्ड हो, मगर हम नहीं मानेंगे, मतलब आपके लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, हम एडवांस नहीं है, हमारा मन ही भाग रहा है, तो जितना नाम ले जितना नाम में मन लग जाएगा उतना एडवांस्ड है, तो सही, ये तो सही बात है ना, इसमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितना भगवान में मन लग गया और जितना भगवान के नाम से आकर्षण हो रहा है तो और एडवांस्ड हो गए। तो एडवांसमेंट की का मेजर यही है कि भगवान से कितना आकर्षण हो रहा है, कितना भगवान के नाम में मन लग रहा है। उस आकर्षण को कैसे पता लगाएंगे हम, वो नाम से पता लगेगा, क्योंकि आप कह सकते हो मुझे तो बहुत आकर्षण, विनोद अग्रवाल भी कह सकते हो मुझे बहुत आकर्षण है, पता नहीं वो माइंड में क्यों आता है, बट आ जाता है वो। सहजा कह सकते हैं मैं आकर्षण है, मगर कैसे पता लगेगा आकर्षण है, आप लोग भी कह सकते हो मैं बहुत आकर्षण है, हमारे घर में भगवान है, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारे का नहीं है, लगता ही है, बट पता लगेगा कैसे, नाम से। अगर आकर्षण है तो नाम में मन इधर उधर नहीं भागेगा, आकर्षण ही है नाम से, अगर भाग रहा है तो आकर्षण नहीं है, कम है, अभी आप स्टैंडर्ड पे नहीं आए। तो अब इसकी मैथमेटिक्स आप खुद ही फॉर्मुलेट कर लो, मुझे नहीं पता, कुछ करनी पड़ेगी। अगर एक माला में मन लग रहा है, 15 माला में नहीं लग रहा, तो कितना आकर्षण होगा, आई डोंट नो। अगर 16 को 100 माने, उसको 1/15 से डिवाइड करें, कितना हुआ 100 को 15 से डिवाइड करना है, 6.25% आकर्षण। बाय द वे मैं ऐसी मैथ्स बना रहा हूँ। अगर 2 माला में लग रहा है तो 12.5% आकर्षण हो गया। कुछ बना सकते हैं मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी से बना सकते हैं, मे बी कैलकुलस से, कुछ कैलकुलस से नहीं बनेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी से या कुछ कर सकते हैं। भगवान मैथमेटिक्स बना रहे, मैं नहीं कह रहा, इसमें हम नहीं बना रहे, भगवान ने बनाई है ना, मनुष्य नाम सहस्रेशु, भगवान ने तो स्टैटिस्टिक्स रखी है, हजारों में से एक मेरे पास आएगा, भगवान की भी तो स्टैटिस्टिक्स, कुछ तो स्टैटिस्टिक्स होगी, इसकी भी कुछ होगी, भगवान के पास होगी, हमें नहीं पता। क्योंकि वैसे आइंस्टाइन ने बोला था कि द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज मैथमेटिक्स, ये सब मैथ से चल रहा है ना कुछ तो होगा, वी डोंट नो, बट हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बट द पॉइंट इज हमें जानने की जरूरत है कि आकर्षण बढ़ाओ भगवान में अपना, ये आइडिया है, उस पर फोकस करो, माला कंप्लीट करने पर फोकस मत करो केवल, वो तो वो बाय डिफॉल्ट करनी है, वो फोकस नहीं है हमारा, फोकस और डिफॉल्ट समझते हो ना, क्या हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, कैसे कहते हैं, हमें लक्ष्य हमारा सिर्फ माला कंप्लीट करना नहीं है, माला बाय डिफॉल्ट मतलब माला कंप्लीट करना तो स्वाभाविक होना चाहिए, मतलब करनी है, वो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे खाना खाना ऐसे माला कंप्लीट करनी है। अगर अभी भी आपका लक्ष्य माला कंप्लीट करना है तो सॉरी आप बहुत पीछे हो अभी भक्ति में, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब बहुत पीछे हो अभी, वो तो करनी है तो करनी है, दैट्स ऑल, ओके। एम थोड़े ना होता है कोई, एम है आकर्षण, हमारा कितना मन लग रहा है भगवान में, कितना आकर्षण हो रहा है, दैट यू हैव टू सी ऐसे, और जहां छोड़ोगे जितना आकर्षण होगा वहीं से आप पिकअप कर लोगे, वहीं पिकअप हो जाएगा, फिर आप अगले जन्म में सुनोगे हरे कृष्णा, आपको आकर्षण होने लगेगा, यार ये अच्छे लोग हैं, बड़ा मन कर रहे हैं क्या रहने का। जैसे जॉर्ज हैरिसन नहीं था, उसने तो बोला था कि जब जॉर्ज हैरिसन पता ना सबको, बहुत बड़ा सिंगर था बीटल ग्रुप का यूरोप में, तो जब ये लोग गए डिवोटी वहां पे हरिनाम कर रहे थे, जॉर्ज हैरिसन ने कहा मैं एकदम से आकर्षित हो गया, बाकी उसके और बैंड वाले आकर्षित नहीं, उसके कौन था जॉर्ज हैरिसन का दूसरा बंदा, जॉन लेनन वो नहीं आकर्षित हुआ, जॉन लेनन वो नहीं हुआ, जॉर्ज हैरिसन हो गया एकदम से देखकर, उसने कहा हरिनाम कर रहे थे डिवोटीज, वो आके बैठ गया, उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड वो भी हरे कृष्णा करने लगा। तो पिछले जन्म में प्रभुपाद ने बोला था उसको कि तुम पिछले जन्म में बंगाल में थे, उन्होंने बोला है, और तुम इस जन्म में भी बहुत बड़े सिंगर हो, पिछले जन्म में भी सिंगर थे, बहुत बड़े घराने में थे बंगाल में सिंगर, और बंगाल में होगा तो डेफिनेटली एक्सपोज तो होगा ही हरे कृष्णा मंत्र से, बंगाल में तो महाप्रभु का ही, तो वही आकर्षण होगा, उसको गाता होगा, तो हो सकता है डिवोटी से भी कॉन्टैक्ट में हो, तो वो वहां से उसने पिकअप कर लिया. सो आकर्षण है. ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति परे स्थित, फिर धीरे धीरे आकर्षण प्रैक्टिस करके करके वो भक्ति में स्थित हो जाता है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सी. अच्छा मुझे बताओ एक, वैसे प्रभुपाद एक पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें कितना आकर्षण है हमें कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन वही है. सेवा करने का मन तो हर एक ही करता है, नया आदमी का भी करता है, तो क्या उसको आकर्षण है, कैसे पता लगेगा. हाँ चलो, भोग से आकर्षण का मतलब कितना हो रहा है वो तो चलो एक 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 नेगेटिव चीज हो गई ना, मैं पॉजिटिव चीज बोल रहा हूँ. पॉजिटिव में क्या देखोगे, हो सकता है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रभुपाद ने बोला है एक, अगर आकर्षण होगा वहां से तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मगर हाँ हो सकता है ये भी है. और कुछ है, हाँ वो एक बहुत हाई लेवल है ना, मैं एक आप जनरल लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, हमें कैसे पता लगेगा कि आकर्षण हो रहा है, हमें कैसे. हाँ आ गया बताओ. नहीं वो तो कहीं और मन तो मेरी दादी का भी नहीं लगता था. चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं पता लगता. और एग्जैक्ट क्या सिम्टम है, ये सब है मगर, ये सब है मगर मेन नहीं है, है नहीं, इन सिम्टम से आप जज नहीं कर सकते मेन क्या है. प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में, अगर आप ध्यान दोगे जाके पढ़ना, प्रभुपाद सब कुछ लिख रहे हैं मगर ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा. क्या कहते हो, पहली लाइन में लिख रहे हैं, पहली लाइन इस तात्पर्य के क्या लिख रहे हैं, उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं. योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, ये पहली लाइन है. और अगली लाइन क्या है, अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं करता. पॉइंट यह है कि नियमों के प्रति जितना आकर्षित होगा उतना रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांगली फॉलो करोगे, ये प्रभुपाद की प्रैक्टिकल इनसाइट है. बस आप अपने आप को चीटिंग नहीं कर सकते, मतलब आप नाम में भी चीटिंग कर सकते हो कि मेरा मन लग रहा है, देखो मैं तो आकर्षित हो रहा हूं, वो तो हो सकता है ना. और कभी कभी मन भगवान लगा भी लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, खींच लेते हैं, जैसे आप नहीं कहते खींच लेते हैं, मगर इसका थोड़ा ना कि आपको आकर्षण हो रहा है, वो तो भगवान ने आपको एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो वो आकर्षण तो भगवान कर रहे हैं, हमारे अपने आत्मा में अपना आकर्षण नहीं है, स्पॉन्ट स्वाभाविक आकर्षण. सो वो कैसे पता लगेगा, वो नियमों से पता लगता है. अब जितना, इसलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस एज अ मिलिट्री रूल की तरह फॉलो करो रूल्स. उपाने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बोला है. सो जो नियम फॉलो नहीं कर रहा अच्छी तरह स्ट्रिक्टली, अगर वो कह रहा है मुझे आकर्षण है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, नहीं हो सकता, ही इज लाइंग, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है बस. सो रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो. तो अगर कोई कह रहा है मुझे तो भगवान से बहुत आकर्षण है, आप कितने बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहा हूँ, ठीक है, दैट्स ओके, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है आपका आकर्षण है, क्योंकि प्रभुपाद का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि सुबह मंगल आरती में उठना, स्टैंडिंग ऑर्डर है वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. मतलब अगर हम नींद भी नहीं छोड़ सकते तो क्या आकर्षण है, अगर भगवान से आकर्षण है तो सुबह नहीं उठ सकते हम. सो कुछ नियम तो बेसिक फॉलो करने होते हैं, जितने ज्यादा नियम फॉलो कर रहे हो उतना ही भगवान को समझ आ जाएगा कि इसको मुझसे आकर्षण है, क्योंकि नियम फॉलो कर ही नहीं सकते बिना आकर्षण के, कैसे आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते, प्रेशर आ जाएगा, है नहीं, बिना आकर्षण के तो फोर्स हो गया ना, कितना कर लोगे आप. सो स्वाभाविक रूप से तो आकर्षण से होता है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे नियमों की बात लिख रहे हैं. दिस अ गुड इनसाइट. नहीं जिज्ञासु रोग से शब्द ब्रह्मा अति वर्तते, ओके एनी वे 45th श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रकृति करने का प्रयास करता है अब योगी ने नियम फॉलो कर रहा है, अगले मलंग जब मैं पैदा हुआ उसने वहीं से शुरू कर दिया, फॉलो कर रहा है प्रत्नाद अद्य मान अस्तु। अब वो प्रयत्न कर रहा है योगी समशुद्धि किल्बिषा, और वो सारे किल्बिषा मतलब सारे कलमशों से पापों से धीरे धीरे कट जाएंगे, शुद्ध हो गया। अनेक जन्म समसिद्धि, ये बड़ा अजीब वर्ड है। तो अंतोद्गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। मतलब अगर आप अच्छी तरह फॉलो भी कर लो अपने अगले जन्म में, तब भी उसके बाद कितने जन्म लगेंगे तो ये क्या न्यूज है वैसे? व्हाट डू यू से फॉर दिस? क्या अभी भी अनेक जन्म लगेंगे हमें सीरियसली करने के बाद भी? सो वेल, अनेक जन भगवान कह रहे हैं, मगर अगर हम सिंसियरली फॉलो करेंगे, अगर बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करेंगे, भगवान को चीटिंग नहीं करेंगे, तो भगवान उन अनेक जन्म को एक जन्म में कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, भगवान कंप्रेस कर देंगे। जैसे मैं उस दिन पढ़ रहा था वो, जैसे भगवान तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना। सो रावण के मरने का समय था द्वापर युग, एक्चुअली द्वापर युग में मरना था रावण को, उसका निर्धारित समय। मगर सारे ऋषि मुनि भगवान के पास गए, भगवान से कहा भगवान ये तो रावण के जो अत्याचार है वो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। मतलब वो लोग गए थे सतयुग के एंड में, त्रेतायुग के शुरू में, तो उन्होंने कहा भगवान कुछ करिए, अब टॉलरेट नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा भी उसका निश्चित समय तो द्वापर युग में है, ये तो त्रेता चल रहा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर भी तुम लोग सब मेरे डिवोटीज हो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को मना नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ने रावण को त्रेता युग में मार दिया। अब कैसे मारा? भगवान विधि का निश्चित किया हुआ टाइम भी नहीं रोक सकते, मतलब भगवान रोक सकते हैं मगर चेंज नहीं करते ना। तो भगवान राम ने, देवी देवता ने पूछा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने तो ये जो नियम आपने तोड़ दिया, तोड़ सकते हैं आप मगर आपने फिर भी तोड़ा, कैसे तोड़ा? कुछ उसके पीछे और कुछ रूल होगा? भगवान ने कहा हाँ। भगवान ने कहा कि मैंने त्रेता को ही द्वापर समझ लिया और उसको मार डाला और ये लॉजिकल नहीं है। मतलब आप कह सकते हो भगवान ऐसे तो आप कुछ भी कर सकते हो माइंड में समझ के, भगवान ने कहा नहीं, इसके पीछे भी रूल है, क्योंकि इस युग में त्रेता द्वापर हो गया, द्वापर त्रेता हो गया, इस युग में उल्टा हुआ है, इस चतुर्युग में उल्टा हुआ है। पहले के सारे चतुर्युग में पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर मतलब दो, त्रेता मतलब तीन। सो पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता, फिर कलयुग। इस युग में चेंज हुआ है बस, जिस युग में चैतन्य प्रभु आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं, उस युग में उल्टा हो जाता है, त्रेता पहले चला था, द्वापर बाद में आता। तो भगवान ने कहा भी वैसे तो रूल द्वापर का पहले ही होता है इन जनरल, तो मैंने वो जनरल रूल लगा लिया यहाँ पर और उसको मार दिया। मैंने कोई स्पेकुलेशन थोड़े ना कि मैंने मनगढ़ंत थोड़े ना, कुछ भी कर सकता हूं मैं, उसके पीछे भी रूल है। सो आप देख रहे हो किसी को सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था, भगवान को सॉल्यूशन, इसलिए भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म लगेंगे मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान अनेक जन्म को एक जन्म में कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली अपने एक लेटर में, मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद ने अपने लेटर में लिखा है कि लेटर में लिख रहे हैं कन्वर्सेशन में कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं देखो मेरे डिसाइपल्स जो हैं फॉरनर्स, इनको ब्राह्मण, इंडिया के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि यज्ञ कैसे कर रहे हैं, पूजा कैसे कर रहे हैं, मलेच्छ हैं, इनको तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नॉनसेंस है लोग, प्रभुपाद कह रहे हैं कि दीक्षा विधान से दूसरा जन्म है नहीं है। वो कौन सा श्लोक है प्रभुपाद कोट करते थे यार? नहीं नहीं, वो बेल मेटल को छू देते हैं, अगर आप वो मरकरी, अगर आप मरकरी को गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पता है ना, पारा में एक प्रोसेस होता है, एक श्लोक है, दीक्षा विधान से शूद्र भी ब्राह्मण में कन्वर्ट हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब उसका दूसरा जन्म, इसी जन्म में दूसरा जन्म हो गया दीक्षा से, सेकंड बर्थ होता है दीक्षा, सुना है नहीं सुना है? एक्चुअली हर व्यक्ति के तीन जन्म होते हैं, पहला जन्म होता है माँ के घर से, दूसरा जन्म होता है ब्राह्मण, तीसरा जन्म होता है वैष्णव। हमारे केस में ब्राह्मण वैष्णव एक ही साथ हो गया, एक प्रेगनेंसी बच गई हमारी वन बर्थ फिर सेफ हो गया। सब जब इसी जन्म में तीन जन्म हो सकते हैं आपके, तो अनेक जन्म नहीं हो सकते, भगवान कर देंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि जन्म, प्रभुपाद ने कहा उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई, उससे उनका अगला जन्म हो गया। आफ्टर ऑल जन्म चेंज होना शरीर की बात नहीं होती, शरीर बदल रहे नहीं बदल रहे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपका शर्ट बदल रही है क्या फर्क पड़ रहा है, जन्म बदल गया मतलब आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, आपके एनवायरमेंट से, आपके परिवार से, साइकोलॉजी अलग हो गई ना आपकी वहां पर उस सिचुएशन में। अगर आपके जन्म में आपकी मेंटेलिटी चेंज होती जा रही है तो आपका जन्म नया होता जा रहा है नहीं। और लोगों को कहते भी हैं, लोग कहते नहीं, जब मान लीजिए कोई बहुत बुरा आदमी है बहुत अच्छा काम करने लगे जन्म चेंज हो जाए, तो बोलते नहीं कि भाई इसका तो नया जन्म हो गया, कहते ही है ऐसे ही है बस। तो अनेक जन्म सम सिद्धि, जरूरी नहीं है अनेक जन्म लगे, अगर आप सिंसियर हो तो भगवान अनेक जन्म, ये भगवान एक्चुअली ध्यान योगी को ले कह रहे उनको अनेक जन्म लग जाएंगे। अगर भक्ति योग में प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो भगवान अनेक जन्म को एक जन्म में कंप्रेस करते हैं, मतलब भगवान भी विनसिप कर सकते हैं अगर हम कर सकते हैं तो, ये कैन ऑल्सो डू, विन रार होगा शायद उनके पास, विनसिप तो नहीं, दैट्स बेटर। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ, जिसको कंप्यूटर ज़्यादा उसको समझ आ रहा हूँ। सो 46 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं, अब कंक्लूजन दे रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है। अब ये सारे प्रिंसिपल सबके लिए चल रहे हैं, कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, प्रिंसिपल चल रहे थे ना अभी तक तो, है नहीं, मैंने बताया प्रिंसिपल, सिद्धांत और क्रियाएं। सिद्धांत अभी तक भगवान डिस्कस कर रहे हैं, ध्यानयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोग, सबके लिए सिद्धांत सेम है कि वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर वहीं से शुरू करेगा, जितनी आकर्षण होगी सेम है। भक्तियों के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी है वो बात अलग है, मगर सेम है, मगर तरीका अलग अलग है, कोई तरीका फास्ट है कोई तरीका स्लो है। भगवान इस अगले श्लोक में अब तरीके की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, तो अगले दो श्लोक में प्रोसेस की बात कर रहे हैं। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार के योगी, सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान कह रहे हैं भी तपस्वी, ज्ञानी, ज्ञानयोग, कर्मयोग उससे बड़ा योगी होता है। और 47 में अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते माम समयक्ततमो मतः, और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, मतलब भक्ति योग, अपने अंत्यकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत है। ध्यान योगी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, जितने भी योगी, सबसे टॉप मोस्ट कौन है, भक्ति योग, एटलीस्ट भगवान का मत यही है। सो प्रभुपाद बहुत बड़ा पपट लिख रहे हैं, जाके पढ़ लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया सब इसमें। हरे कृष्णा, कुछ पूछना कुछ कहना है, श्रील प्रभुपाद की जय।